ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है, जिनके साथ यह घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर यह चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है।
अक्सर रात में कई बार मुझे लगता है कि मेरे बगल में कोई सो रहा है। करवट लेता हूं तो लगता है कि कोई मुझे रोक रहा है। सोने की कोशिश करता हूं तो लगता है किसी ने मेरी नींद चुरा ली। बाथरूम में पानी की बूंद गिरती है तो लगता है किसी की रूह यहां वहां भटक रही। कभी जुबान अलग में अटक कर रह जाती है तो कई बार मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाता। सुनने में ये बात बेहद डरावनी लगती है और हकीकत में अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो खौफ से आपकी जान भी जा सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो,
बंगला नंबर 11। ये कहानी है शिवम और उसकी पत्नी की। ये बात आज से करीब 4 साल पहले की है। शिवम का हाल ही में दिल्ली ट्रांसफर हुआ था और उसे एक घर खरीदना था। कुछ महीनों की मशक्कत के बाद शिवम को आखिर एक घर मिल ही गया। ठंड का मौसम था और उसका घर दिल्ली के बाहरी इलाके में था। शिवम ने बिना कोई सोच विचार करे घर खरीद लिया और 10 दिन के अंदर ही वो अपनी पत्नी सीमा और अपनी बेटी रूही को लेकर शिफ्ट हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। सीमा और रूही को भी घर बहुत पसंद आ रहा था। शिवम को 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा। सीमा और रूही घर में अकेले थे। रूही को शिवम के बिना सोने की आदत नहीं थी। रात काफी हो चुकी थी और रूही सोने का नाम नहीं ले रही थी। जैसे तैसे करके सीमा ने रूही को सुलाया और खुद भी सो गई। रात के करीब 2:15 बजे सीमा को ठंड लगी और उसकी आंख खुल गई। सीमा अलमारी से ब्लैंकेट लेने के लिए उठी तो उसकी नजर बगल की दीवार पे पनी खिड़की पर गई और उसने जो देखा वो देख पल भर के लिए उसकी सांसें थम गई। उसको लगा कि खिड़की से कोई उसे देख रहा है। उसकी आंखें मानो बिल्ली की तरह चमक रही थी। सीमा ने डर के मारे कमरे की लाइट जलाई और तभी रूही भी उठ गई। सीमा ने उसको वापस सुलाने के लिए माथे पर हाथ लगाया तो देखा कि रूही का माथा बुरी तरह तप रहा था। सीमा ने उसे दवा दी और दोनों सो गए। अगली सुबह सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन सीमा के मन में बहुत कुछ चल रहा था। उसके दिमाग में अभी भी वो दृश्य घूम रहा था जो उसने रात में देखा। हंसते खेलते घर में अचानक सीमा को रात में ठंड लगना, खिड़की से किसी को झांकते हुए देखना और हंसती खेलती रूही को बुखार आ जाना, क्या ये सब कोई इत्तेफाक था? सीमा के मन में इन सवालों ने अपना घर बना लिया था। रात के करीब 8:30 बजे शिवम घर वापस आया और सीमा ने उसे रात के बारे में बताया। शिवम ने उसे तसल्ली देते हुए कहा कि भूत प्रेत सब कहने की बातें होती हैं, असल दुनिया में इनका कोई वजूद नहीं होता। उन लोगों की लाइफ एकदम नॉर्मल चल रही कि तभी अचानक एक दिन सीमा की तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सीमा को हुआ क्या है। 3-4 दिन इलाज चलने के बाद सीमा को होश आया और सीमा ने शिवम को बताया कि इस घर में भूत है। उसने 3 दिन पहले हमारे बेडरूम में किसी को हमें घूरते हुए देखा और जब मैंने उसकी तरफ देखा तो वो वही परछाई थी जिसे मैंने उस दिन खिड़की से झांकते हुए देखा। शिवम को सीमा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और उसने सोचा कि शायद दवाइयों की वजह से सीमा बहकी बहकी बातें कर रही है। शिवम ने सीमा को सुलाया और खुद भी सो गया। रात में अचानक शिवम को ऑक्सीमीटर की बीप सुनाई दी तो उसने उठ के देखा, सीमा जमीन पे गिरी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शिवम तुरंत भागते हुए डॉक्टर को बुलाकर लाया, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा की सांसें रुक चुकी थी और अब वो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। शिवम का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ चुका था, उसकी आंखों में आंसू जम चुके थे और उसे ये यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी पत्नी सीमा अब इस दुनिया में नहीं है। वो अपनी 6 साल की बेटी रूही को क्या बताएगा कि उसकी मां कहां गई। सीमा के जाने के बाद रूही बहुत उदास रहने लगी और शिवम को दिन रात इस बात की चिंता सताती थी कि सीमा के बाद कहीं रूही को कुछ हो गया तो क्या होगा। शिवम ने रूही का मन बहलाने के लिए एक कुत्ता पाल लिया। उसने सोचा कि रूही इसके साथ खेलेगी तो उसका मन भी बहल जाएगा, लेकिन वो कहते हैं ना, अक्सर जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं, और जो होता है उस पर हम यकीन नहीं कर पाते। रूही का मन तो अब बहलने लगा था, लेकिन शिवम की रातों की नींद मानो किसी ने छीन ली। उसे रोज रात को डरावने सपने आते और उसे लगता कि कोई जैसे उसे बुला रहा। दिन पर दिन ये सपने और भी डरावने होते जा रहे। शिवम को भी अब उस घर में डर का एहसास होने लगा। उस घर में दिन के वक्त भी काफी अंधेरा रहता था और शिवम को ऐसा महसूस होता था कि वो अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा हो। उसे कभी कभी लगता था कि सीमा अभी भी उस घर में ही है। कुछ महीनों तक ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन दोपहर का वक्त था, रूही और शेरू दोनों घर में अकेले ही थे। तभी अचानक शेरू घर के दरवाजे को देख जोर जोर से भौंकने लगता है और गुर्राने लगता है। रूही उसे काबू में करने की कोशिश करती है, लेकिन यह सिलसिला करीब 1 घंटे तक चलता है। शेरू कभी खिड़की को देख गुर्राता है तो कभी दीवार को। शाम को जब शिवम घर आता है और वो जैसे ही अपने घर का दरवाजा खोलता है, शेरू घर से बाहर भाग जाता है और न जाने कहीं गुम हो जाता है। शिवम उसके पीछे पीछे भागता है, लेकिन शेरू उसकी आंखों से कब ओझल हो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। क्या ये कोई अनहोनी के होने की शुरुआत थी, या फिर किसी ने शेरू को अपने वश में कर अपने पास बुला लिया। शिवम जैसे ही घर गया तो देखा घर में अंधेरा छाया हुआ और लाइट भी नहीं। शिवम की रूह कांप उठती है और वो पूरे घर में रूही को ढूंढता है और देखता है कि रूही अपने कमरे में सुकून से सो रही है। वो देख उसकी जान में जान आती है। रात में करीब 1 बजे शिवम की आंख खुलती है और उसे लगता है कि उसके घर की छत पर कोई चल रहा है। वो डर जाता है और जैसे ही देखने के लिए उठता है, तभी उसके घर की घंटी बजती है और कोई दरवाजा खटखटाता है। शिवम घोर चिंता में पड़ जाता है कि इतनी रात गए कौन हो सकता है। वो दरवाजा खोलता है और जो शिवम देखता है वो दृश्य देख उसकी रूह कांप उठती है। दरवाजे पर खून में लथपथ शेरू की लाश पड़ी होती है। वो मंजर देखने में इतना खौफनाक था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। शिवम को कुछ समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। अचानक बादल कड़कने लगते हैं और बारिश होने लगती है। शिवम शेरू की लाश को उठाकर गार्डन में ले जाता है और खड्डा खोदने लगता है। तभी उसके घर से उसको रूही के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो भागता हुआ घर के अंदर जाता है और सीधे रूही के कमरे में जाता है और वो देखता है कि रूही आधी हवा में लटकी है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है और वो जैसे ही अपने मुंह से रूही बोलता है, वैसे ही रूही बेड पे गिर जाती है और उसकी आंख खुलती है। शिवम उससे पूछता है कि तुम ठीक हो। रूही शिवम को कोई जवाब देती उससे पहले उसे एक परछाई दिखाई देती, और वो परछाई किसी और की नहीं, वो वही परछाई होती है जो सीमा को मरने से पहले दिखाई दी। रूही शिवम को कांपती हुई आवाज में बोलती है कि पापा, पर्दे के पीछे कोई है, मैंने अभी अभी उसे देखा है। शिवम पर्दे के पीछे देखता है तो वहां कोई नहीं होता है। शिवम रूही को बहला फुसला के सुला देता है, लेकिन शिवम को यह बात अब समझ आ चुकी थी कि कोई प्रेत आत्मा है इस घर में जो उन्हें परेशान कर रही है और जो उन्हें इस घर को छोड़ जाने पर मजबूर कर रही। शिवम उस रात सो नहीं पाता। सुबह के करीब 4 बजे शिवम की आंख लग जाती है और उसे रूही की चीख सुनाई देती है। शिवम भागता हुआ ऊपर जाता है और रूही उससे बोलती है, पापा हमारे घर में कोई, उस भूत ने मुझसे अभी बात करी और बोला कि मैंने ही तेरे कुत्ते शेरू और तेरी मम्मी सीमा को मारा है। शिवम रूही को गोद में उठाता है और नीचे लेकर जाता है। तभी रूही को वो परछाई वापस दिखाई देती है और वो बोलती है कि पापा वो भूत घर के दरवाजे पर खड़ा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। शिवम रूही को गोद से उतारता है और घर के बाहर जाता है और तभी घर का दरवाजा बंद हो जाता है और तभी घर के अंदर से रूही के चीखने की आवाजें आती हैं और उसकी चीख के साथ अंदर से और भी अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। शिवम पागलों की तरह दरवाजा पीटता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। उसकी नजर गार्डन में जाती है और वो देखता है कि शेरू की लाश वहां से गायब है। कुछ देर बाद वहां घोर सन्नाटा छा जाता और तभी घर का दरवाजा खुलता है। शिवम अंदर जाकर देखता है तो वहां उसे अंधेरे के सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता। शिवम घर के हर कोने में रूही की तलाश करता है लेकिन वहां उसे रूही की एक तस्वीर के सिवाय कुछ नहीं मिलता। आश्चर्य की बात यह थी कि उस तस्वीर में रूही के चेहरे पर खून लगा हुआ था और उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो वही कपड़े थे जो रूही पहनकर सोई थी। आखिर रूही के साथ क्या हुआ? वो आवाजें वो किसकी थी और शेरू की वो लाश वो कहां गायब हो गई? इस बात को 4 साल बीत गए और आज भी मैं रूही और शेरू की तलाश में यहां वहां भटक रहा हूं। तभी एक दिन मेरे घर के दरवाजे पे कोई खूबसूरत सा तोता छोड़ जाता है। शिवम ने शायद ही ऐसा तोता अपनी जिंदगी में कभी देखा था। शिवम उस तोते को देखता है और हैरान रह जाता है। वो तोता उसे बोलता है कि मुझे देखता ही रहेगा या फिर अंदर भी लेके जाएगा। शिवम उसकी आवाज सुन दंग रह जाता है और वो जैसे ही उस तोते को उठाता है उस तोते का रंग काला पड़ने लगता है। तोता बोलता है कि तेरे घर में भूत है, मैंने अभी वहां एक औरत की परछाई और एक बच्ची को भागते हुए देखा। ना बोल वो तोता अपना दम तोड़ देता है। शिवम अब पूरी तरह बौखला चुका था कि आखिर ये सब उसके साथ क्या हो रहा है। पहले सीमा का यूं अचानक चले जाना, फिर रूही का यूं गायब हो जाना और ये तोता। शिवम का सर घूमने लगा और वो वहीं बेहोश हो जाता है कि तभी अचानक पीछे से एक आवाज आती है,
पापा पापा उठो, स्कूल के लिए लेट हो रहा है।
धन्यवाद, आप सुन रहे थे द हॉरर शो। आज की कहानी में बस इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे नई कहानी नए खौफ के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप मेरी कहानियों को Spotify, Gaana.com, Apple Music जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पे सुन सकते हैं। और आप मेरी कहानियों को विजुअल्स के साथ देखना चाहते हैं तो आप मेरे YouTube चैनल द हॉरर शो को विजिट कर सकते हैं।